તારીખ 11/12/1995, શ્રીમદ રાજચંદ્ર, પત્રાંક 499 અને 147 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 519.
હિન્દી ગ્રંથ છે, હિન્દી ગ્રંથ મિલેગા? હિન્દી ગ્રંથ હૈ આપકે પાસ? હૈ આપને પાસ? પત્ર 499, પેજ 398. હિન્દી મેં તો અલગ પેજ હોગા, એ ગુજરાતી છે. જે વ્યવસાય કરી જીવને ભાવ નિંદ્રાનું ઘટવું ન થાય તે વ્યવસાય કોઈ પ્રારબ્ધ યોગે કરવો પડતો હોય તો તે ફરી ફરી પાછા હતીને મોટું ભયંકર હિંસાવાળું દુષ્ટ કામ જ આ ક્રિયા કરું છું એવું ફરી ફરી વિચારીને અને જીવમાં ઢીલાપણાથી જ ઘણું કરીને મને આ પ્રતિબંધ છે એમ ફરી ફરી નિશ્ચય કરીને જેટલો બને તેટલો વ્યવસાય સંક્ષેપ કરતાં જે પ્રવૃત્તિ થાય તો બોધનું ફળ થવું સંભવે છે. એક વાક્ય છે આખું, ગુજરાતીમાં સમજાશે? નહીં સમજાય? નહીં સમજમાં આવેગા? ઠીક, ફિર હિન્દી મેં લેંગે. જો વ્યવસાય કે કારણ છે જીવ કો ભાવ નિંદ્રા કા કમ હોના ન હો, વ્યવસાય કોઈ પ્રારબ્ધ યોગ સે કરના પડે એસા હો, તો બાર બાર પીછે હટકર બડા ભયંકર હિંસાત્મક દુષ્ટ કાર્ય મેં કર રહા હું એસા બાર બાર વિચાર કરકે ઓર જીવ મેં શિથિલપણા કે કારણ સે યહ મુજે પ્રતિબંધ હૈ એસા બાર બાર નિશ્ચય કરકે જીતના હો સકે ઉતના વ્યવસાય કો સંક્ષેપ કરકે પ્રવર્તના ચાહીએ તો બોધ કા ફલ હો સકતા હૈ યા હોના સંભવિત હૈ. ક્યા કહેતે હૈ વ્યવસાય? મેને વ્યાપાર યા નોકરી જો ભી હો, ખાસ કરકે એ પુરુષ વર્ગ કો લાગુ પડતા હૈ, ફિર ભી આજકલ તો મહિલાએં ભી વ્યવસાય ઓર નોકરી કરતી હૈ. જો ભી હો, કોઈ એસા વ્યવસાય હો કે જિસ કારણ સે દર્શન હો કમ કરના હમ ચાહતે હૈ લેકિન કમ નહીં હોતા હૈ, એસા પ્રકાર વ્યવસાય કા હો, જૈસે કોઈ વકાલત કા વ્યવસાય હૈ તો ઉસમે દર્શન હો કમ હોના બહોત મુશ્કિલ હૈ. ક્યો કે આજકલ જો કાનૂન કી પરિસ્થિતિ હૈ, ઇસ કાનૂન કી પરિસ્થિતિ કે લિયે એસા બોલા જાતા હૈ કે સીધી ઉંગલી સે ઘી નહીં નિકલતા, क्या बोला जाता है? सीधी उंगली से घी नहीं उकलता, टेढ़ी उंगली रखे तो घी निकलता है। यानी सरलता से कोर्ट कचहरी में काम नहीं होता, सरलता वाला हार जाता है। तो ऐसा जो व्यवसाय है वो छोड़ देना अच्छा है, या तो कम कर देना अच्छा है। क्योंकि कानूनी ऐसा है कि झूठ बोले तो ही काम चलता है, या झूठे केस भी आते हैं सामने, और कानून के हिसाब से भी ऐसी परिस्थिति होती है। ऐसे अनेक प्रकार के व्यवसाय होते हैं जिसमें व्यवसाय करने वाले मुमुक्षु को, आत्मार्थ को, ऐसा लगे कि इसमें तो मेरा दर्शन मोह बढ़ता है। ऐसे तो जो बोलना वो चारित्र मोह का पर्याय है, लेकिन वहां तो अभिप्राय करना पड़ता है, अभिप्राय से अनुमोदन करना पड़ता है कि ऐसा करेंगे तो ही काम चलेगा, वरना वो कानून ऐसा है। और कानून में क्या है, कानून के हिसाब से चलने वाले तो जड़ बुद्धि से चलते हैं, कानून ऐसा बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी न्यायाधीश लोग को ऐसा कहना पड़ता है कि हम समझते हैं कि ये ठीक है, ये सच है, ये झूठ है, लेकिन कानून के हिसाब से परिस्थिति दूसरी खड़ी हो गई, तो हमको तो कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। हम भी कानून से बंधे हुए हैं, मतलब ऐसी बात बनती है। तो ऐसा व्यवसाय कोई पूर्व के प्रारब्ध योग से आपड़ा हो, करना पड़ता हो, तो उसके लिए परिणाम में पीछे हट करना। क्या करना? परिणाम में पीछे हट कर लेना। क्लाइंट को तो क्या है कि व्यवसाय नहीं है, क्लाइंट का वो व्यवसाय नहीं है, वो तो उनको कोई प्रसंग पड़ा है वो बात है, वो इनका व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय वाले को क्या है, रोजाना वो काम करना पड़ता है, जबकि क्लाइंट को तो कोई अपना मुकदमा चलाना हो तब की बात होती है, वो तो जिंदगी में एक या दो होता है। जबकि वकालत को तो डेली हमेशा कचहरी में, कोर्ट में जाना और झूठा काम करना। ऐसा ही कोई व्यवसाय ऐसा भी होता है कि जैसे हिंसात्मक कोई व्यवसाय हो तो उसमें भी अभिप्राय बन जाता है, हम तो नहीं करें तो हमारा पेट कैसा भरेगा, हमको तो करना पड़ता है। जैसे तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, सिनेमा, नाटक, नमक, तेल का मिल का होता है, साबुन का होता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन, ऐसे हिंसात्मक बहुत से जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें भी जो हिंसात्मक प्रोसेस होता है, हॉट प्रोसेस होता है, उसमें भट्टी चलानी पड़ती हो, कन्फेक्शनरी वगैरह है, बेकरी आइटम है, इसमें भट्टी चलानी पड़ती हो, ऐसे बहुत से व्यवसाय हैं कि जिसमें रोज हिंसा करनी पड़े। हैं हैं हाँ, उसमें भी ऐसा होता है, खेती है, मान काम है, खान का धंधा है, खान खान खानी खानी, बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं। तो जिसको निर्दोष होना है या परिपूर्ण निर्दोष होना है, उनको तो व्यवसाय भी ऐसा चुनना चाहिए, सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए। कमाई तो जो प्रारब्ध में होती है वो उतनी ही होती है, क्योंकि सब व्यवसाय में पैसे वाले भी होते हैं और बिना पैसे वाले भी होते हैं। सब व्यवसाय में पैसे वाले भी होते हैं, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि जिसमें पैसे वाले नहीं होते। हाँ वो भी है, उसमें भी बहुत हिंसा है, बहुत हिंसा है मालूम है, तो वो व्यवसाय जो है ऐसे बहुत से हैं कि जिसके कारण से दर्शन वो कम नहीं हो गए, करना चाहे तो भी। तो जिसको निर्दोष होने का अभिप्राय है वो व्यवसाय का भी सिलेक्शन ऐसा ही करता है कि पहले कोई व्यवसाय चालू करने के पहले ही देख लेता है कि इसमें हिंसा कितनी होती है या कितना सच्चा झूठा करना पड़ता है, धंधा कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है। जैसे आजकल कोई व्यवसाय ऐसा है कि जिसमें 15 आने 2 नंबर का धंधा चले, एक आनी टोकन रूपी 1 नंबर का चले, वो पसंद नहीं करना चाहिए। ऐसा पसंद करे कि जिसमें कम से कम अपराध हो, कम से कम पाप हो, ऐसा अभिप्राय से अपनी आजीविका चलाने का अभिप्राय हो, तो दर्शन मोह कम करने में ठीक पड़ता है, वरना दर्शन मोह कम कम करना चाहे तो भी नहीं होता है। क्योंकि वो पिंच क्या करता है कि रोज ये क्या करते हैं, डेली ये क्या करते हैं, सुबह शाम ये क्या करते हैं, सारे दिन ये क्या करना पड़ता है हमको। घनी जात में बिजनेस में कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस करे से, तो कोई रिसर्च इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर तरीके काम करे से, इन्वेस्ट करवा में तो विवेक करवो जी। शेयर मैंने भागीदारी, शेयर मैंने भागीदारी, तो भाग में तो हिंसा का भाग हो ही गया। जैसे एक गारवारे कंपनी है, वो क्या करती है, मछली पकड़ने के मारने के लिए जाल बनाते हैं। अपन इसमें शेयर लेना कि नहीं लेना,
नहीं
लेना, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट तो अपने जो प्रारब्ध में होगा वही आएगा। तो अपने को थोड़ा देख लेना चाहिए, उसका लिटरेचर तो सब आता ही है, देख करके काम करना अच्छा है। क्या है कि बात तो निर्दोष होने की है, अपने को बचना है, दोष से अपराध से बचना है, निर्दोषता की लाइन हमको पकड़नी है। तो इसलिए जहां भी अपने को नुकसान हो, ये नुकसान है वो पारमार्थिक नुकसान है, आत्मा को नुकसान आवरण आता है, ऐसा क्यों करें। गुरुदेव एक दफे एक मुमुक्षु को बोले थे, मुमुक्षु को अमृतलाल कालिदास भाई जसानी, नानालाल कालिदास जसानी, नानालाल भाई को, सोनगढ़ में जो अपना मंदिर है, मूल मंदिर है, अभी तो बड़ा है, पहले छोटा सा बनाया था, वो नानालाल भाई ने बनवा दिया। उसी वक्त पहले से वो श्रीमंत थे, तो उसने उस वक्त तो उतना समाज भी नहीं था, बहुत कम लोग अनुयायी थे गुरुदेव के पीछे, उसमें वो भी थे तो वो पैसे वाले थे, तो उसने अपना पैसे से मंदिर बनवा दिया। तब तो गुरुदेव बोले थे कि देखो ये तो पुण्य होगा वहाँ तक पैसा रहेगा, पुण्य खुद खत्म हो गया कि पैसे चले जाएंगे, इसलिए खर्च करने से खत्म नहीं होता है। क्या बोले वो, पैसा खर्च करने से कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन पुण्य खत्म होने से पैसा खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे कार्य में खर्च करने में वृत्ति को संक्षेप करना नहीं चाहिए, उसी वक्त बोले थे उस जमाने में। ऐसे कोई भी व्यवसाय अपन निर्दोष व्यवसाय को पसंद करे तो उसमें भी पुण्य होगा उतना ही कमाने का होगा, कमाई तो उतनी ही होगी। जैसे पढ़ाई करते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं उनको डिसेक्शन करना पड़ता है, उसको प्राणी को काटना पड़ता है, मेंढक को काटते हैं, तो फरसे को काटते हैं तो सिलक नहीं करना चाहिए, आखिर में तो पेट भरने की बात है ना। कोई भी काम करो, हर काम में लोग पेट तो भरते ही है, कोई भूखे थोड़ी ना मरते, तो अपने को सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए। वरना भाव निंद्रा में दर्शन मोह है वो कम होगा नहीं, अभाव तो होगा कहां से। तो उसके लिए क्या सोचना कि मैं बड़ा भयंकर हिंसात्मक दुष्ट कार्य को हमेशा हमेशा कर रहा हूं, ऐसा बार बार विचार करना। ऐसा बार बार विचार करने से रस तो आएगा नहीं, खेद होएगा, रस नहीं आएगा लेकिन क्या होगा, होगा जिसको खेद होगा उसको रस कहां से आएगा, तो उसको रस नहीं आएगा। ऐसा विचार करके मेरा प्रतिबंध है, मेरा ममत्व है, क्या मेरा स्थितिपणा क्यों है, ये व्यवसाय का त्याग मैं क्यों नहीं करता, ये व्यवसाय में बंधन क्यों नहीं करता, कि मेरा ही प्रतिबंध, मेरा शिथिलपणा है, और प्रतिबंध के कारण कैसे शिथिलपणा है। चारित्र मोह से शिथिलपणा है वो बात नहीं है, प्रतिबंध लिया है। प्रतिबंध का मतलब है भाव में ममत्व होना, कि इससे ये मेरी आधारशिला है, आधार बुद्धि और सुख बुद्धि, आधार बुद्धि और सुख बुद्धि से प्रतिबंध पैदा होता है, और प्रतिबंध के कारण से मेरा शिथिलपना है, मैं जानता हूं फिर भी छोड़ नहीं सकता, इसका मतलब मेरा शिथिलपना है। और क्यों शिथिलपना है, कि मेरा प्रतिबंध है, मेरी आधार बुद्धि है, मेरी सुख बुद्धि है। ऐसा बार बार निश्चय करके जितना हो सके उतना इस व्यवसाय को संक्षेप कर देना, कम कर देना, जितना हो सके उतना कम कर देना। और कम करके जितनी प्रवृत्ति हो, कम करने से जो प्रवृत्ति हो, ऐसा प्रवर्तन होवे तो उपदेश का फल होना संभवित है। वरना उपदेश सुनेगा तो भी उसका फल आएगा
नहीं,
क्योंकि दूसरी ओर से आत्मा को उपदेश तो आत्मा को निरावरण करने के लिए है, और ये व्यवसाय वो आत्मा को आवरण करने वाला है। उपदेश तो सुने घंटा भर, दो घंटा, तीन घंटा, व्यवसाय बहुत चले और व्यवसाय के विचार भी बहुत चले। व्यवसाय 5-6-8 घंटा करे और उसका विचार कितना चले, इससे भी ज्यादा चले, और 5-6 घंटा चले, सारे दिन वही चलता रहेगा। ये मार्गदर्शन खास करके व्यवसायी जीव को दिया है। चित्त का लिखने वगैरह में ज्यादा प्रयास हो सकता नहीं है, इसलिए ये पोस्ट कार्ड लिखा है, पत्र छोटा सा लिखा ना, ये पोस्ट कार्ड में लिखा है। इसका यही कारण है कि मेरा उपयोग जो है वो चलता नहीं लिखने में, उदासीनता इतनी ज्यादा है कि लिखने में भी उपयोग चलता नहीं है। इसमें ये बात है कि लिखने का पढ़ने का ज्यादा होता है और कम होता है, उसमें कभी कभी क्या होता है, खास करके इस मार्ग में आने वाले, कि जिसको अंतर परिणमन ज्यादा चलता है और अंतर परिणमन में पुरुषार्थ में जो लगे हुए हैं उनको लिखना पढ़ना कम हो जाता है, और जिसको अंदर में नहीं चलता है उनको क्या लगता है कि मेरे उपयोग और जगह जाएगा तो उसमें तो कोई ठीक नहीं है, सत्प्रसंग है, असत्संग है, तो लिखने पढ़ने का ज्यादा काम कर लेता है, क्योंकि उपयोग को और जगह तो लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जिसको ऐसा हो, लिखने पढ़ने में उपयोग ज्यादा देने का होता है, उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अंतर कार्य, अंदर में कार्य करना है, लगते रहूंगा, लिखते रहूंगा या पढ़ते रहूंगा, तो इसमें मेरी अटक होने का, अटकायत होने का शायद बन जाएगा कि मैं पढ़ता ही रहूंगा या लिखता ही रहूंगा। तो मुझे अटकना नहीं है, लिखना पढ़ना में मुझे अटकना चाहिए नहीं। वास्तव में मुझे मेरा अंदर में आत्म परिणमन में कार्य का पुरुषार्थ में लगना, तो कितना भी समय जाए तो वो ठीक है, अच्छा है। ये हुआ 549 पत्र। और 500 पत्र शुरू करने के पहले 147 नंबर का पत्र देते हैं, 147 गुजराती में 147 पत्र, 147 और गुजराती में पृष्ठ संख्या है 130। सिर्फ वो भी एक पोस्ट कार्ड है, बहुत कम उसमें वचन प्रयोग है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण एक बात उसमें है। खीमजी भाई पर लिखे हुआ पत्र है, सुग्न भाई खीमजी। आज्ञा के प्रति अनुग्रह दर्शाने वाला संतोषप्रद पत्र मिला, खिमजी भाई का पत्र मिला है, उससे संतोष हुआ है। पढ़कर के संतोष हुआ तो बोला कि संतोषप्रद, मैंने संतोष देने वाला पत्र मिला, तुम्हारा पत्र पढ़कर के हमको संतोष मिला है। क्या लिखा था इसमें? आज्ञा के प्रति अनुग्रह दर्शाया था कि आप कुछ हमको आज्ञा दीजिए, अनुग्रह मैंने कृपा, आप हमको आज्ञा करने की कृपा करें, ऐसा कोई बात लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कि खास करके मेरे लिए कुछ न कुछ ऐसी आज्ञा करें आप, और इतनी कृपा मेरे पर अवश्य करें। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा हो और मुझे कुछ आपकी आज्ञा मिले जिससे मेरे आत्मा का हित होवे, ऐसा कोई विनंती वाला पत्र मिला होगा, तो इससे पढ़ करके संतोष हुआ है। अब लिखते हैं कि जब आज्ञा की ही बात है तो आज्ञा के विषय में कुछ सिद्धांत है, अध्यात्म का ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दर्शाते हैं। आज्ञा में ही एकतान हुए बिना परमार्थ के मार्ग की प्राप्ति बहुत ही असुलभ है, मैंने बहुत कठिन है। क्या कहते हैं? मुमुक्षु जीव को ज्ञानी की आज्ञा में एकता, आज्ञा पालन, आज्ञा आश्रित, आज्ञा माथे चढ़ाना, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा, बहुत भारी शब्द का प्रयोग किया है या मार्मिक शब्द का प्रयोग किया है कि आज्ञा में एकतान थी हो जाना। क्या एकतान? तो हिंदी में भी एकतान होगा, हिंदी में भी एकतान ही लिखा है ना, एक लय, लय लय शब्द लिखा है, एकतान ही लिखा है। लीन होना, आज्ञा में
लीन होना।
फिर भी एकतान का जो अंडरटोन है बहुत अच्छा है, एकतान का अंडरटोन है वो बहुत अच्छा है। मतलब कुछ जो कोई एकतान होता है उसको कोई दूसरा विकल्प नहीं आता, आज्ञा उठाने के उठाने में दूसरा विकल्प नहीं आता। ऐसा क्यों कहा वो कभी नहीं होता है। जो आज्ञा में एकतान वृत्ति वाले होते हैं उसमें ऐसा क्यों कहा वो बात नहीं रहती है, और ऐसा हुए बिना, मुमुक्षु की ऐसी परिस्थिति हुए बिना परमार्थ के मार्ग की प्राप्ति, मैंने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, आत्मकल्याण की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। कठिन है उतना ही नहीं लिखा है, बहुत ही कठिन है। ये भूमिका एक आनी चाहिए जिसमें ज्ञानी की आज्ञा में एकतान हो जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरी कोई बात।
दूसरा कोई विकल्प नहीं, इस टाइप का बीजों पर विकल्प ना हो, एटले कया टाइप नो बीजो कोई विकल्प ना हो।
आज्ञा ना अनुसरण सिवाय नो, आज्ञा का अनुसरण सिवा के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्या आज्ञा में एकतान होना, मैंने आज्ञा का पालन परिपूर्ण, इसके इस विषय में कोई दूसरा विकल्प नहीं। इस विषय में, आज्ञा के विषय में कोई दूसरा विकल्प नहीं हो ऐसा। जैसे कोई बात हमको लागू पड़ती है, ज्ञानी पुरुष की कोई बात हमारी भूमिका की है और हमको वो लागू पड़ती है, हमारा ऐसा ही दोष है तो दोष मिटाने में वो उपदेश हमको लागू पड़ता है, तो उसका अमलीकरण करने में एक तान हो जाना, कोई विकल्प नहीं उठे। इस विषय में कोई दूसरा विकल्प उठे ही नहीं, पूरा पूरा उसके अमलीकरण में अपनी शक्ति का प्रयोग हो जाए। ऐसी स्थिति आए बिना मार्ग की प्राप्ति बहुत कठिन है। मार्ग तक पहुंचना, सम्यक दर्शन तक पहुंचना, ये बहुत ही कठिन है। ऐसी परिस्थिति में आता है उनके लिए सुलभ है। और आगे लिखते हैं कि एकतान होना, यह भी एकतान होना भी बहुत ही असुलभ है, वो भी कठिन है। क्यों? कि उसमें जो भी हमारी उल्टी परिस्थिति है उसको ठीक करने में ताकत लगानी पड़ती है। जैसे प्रतिबंध हो तो प्रतिबंध तोड़ना पड़ता है। जैसे ज्ञानी कहें कि आपको ये प्रतिबंध है, आपको कुटुंब प्रतिबंध है, तो कुटुंब के सदस्य के प्रति, कहीं भी एक या अनेक के प्रति जो भी ममत्व है, छोड़ना कठिन पड़ता है। या शरीर प्रतिबंध है, छोड़ना कठिन पड़ता है। या प्रकृति का तीव्र दोष है तो छोड़ना कठिन पड़ता है, क्योंकि जब जब अंदर में प्रकृति का उदय आता है, जीव जुड़ जाता है, बह जाता है और परिणमन हो जाता है। तो ये सब के सामने लड़ना पड़ता है, या पुरुषार्थ होवे तभी सफल होता है, और ये पुरुषार्थ करने की आज्ञा होती है। तो आज्ञा में एकतान होना वो भी उतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही असुलभ है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से दोनों बात ऐसी है, अगर ये हो गया, बात तो संक्षेप में लिखी है लेकिन विस्तार तो कितना भी हो सकता है। आज्ञा में एकता होना मतलब क्या, सुलभ नहीं है, कठिन पड़ेगा।
जो गायक है उसके भाव और इसकी ध्वनि काम है।
हाँ वो तो है ही,
वो
ठीक है, संगीत में ज्यादा लागू पड़ता है। कीमत पे वो तो मेरे हित के लिए तो कहते हैं, जो बात है वो तो मेरे हित के लिए है, ये तो बड़ा उपकार है कि मेरी तो सूझ नहीं थी, तो इतना बड़ा उपकार किया और मैं इस उपकार का, अगर मैं इस बात को नहीं उठाता तो ये उपकार का अपकार हो जाएगा। और मेरा मुझे हित करने की भावना भी है, अंदर से भावना है, आत्मा में से उड़ान से भावना आई है, तो अपने हित की जो भी बात मिलती है वो पूरी शक्ति से ये प्रयास करता है तो उसको परमार्थ मार्ग सुलभ होता है। अगर आज्ञा में जीव एकतान हो गया तो उसको परमार्थ मार्ग सुलभ हो जाता है, वरना बहुत बहुत ही असुलभ है, इसके बिना बहुत ही असुलभ है, थोड़ा असुलभ नहीं है, बहुत ही असुलभ है। तो एक यहाँ विशेष रूप से एक दृष्टिकोण दिया है कि इस बात, इस दृष्टिकोण से आप अपना हित करो कि मेरे लिए तो ये आज्ञा है और पूरी शक्ति से उसको उठा लेना है, बस। देखो आत्महित होना कितना सुलभ हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ही कठिन है। बहुत ही कठिन है मैंने क्या है कि जब कोई जीव यथार्थ उपाय को अंगीकार नहीं करता है तो फिर इसकी वृत्ति दूसरे दूसरे उपाय करने में लग जाती है। ज्ञानी कहेंगे कि तुमको ये करना है, और उनको वो कठिन लगता है तो वो क्या करेगा कि मैं ऐसा करूँ तो, मैं फैसा करूँ तो, तो वो क्या है कि उसको जो कहते हैं उस पर उसको ध्यान देना नहीं है, क्योंकि उसको कठिन पड़ता है, उसको अनुकूल नहीं पड़ता है। कभी कभी कोई बात ऐसी होती है कि जो अनुकूल नहीं पड़ती है तो जीव दूसरा दूसरा उपाय ढूंढता है, या दूसरा दूसरा उपाय करने लग जाता है, या दूसरा उपाय करने में उसकी वृत्ति जाती है कि हम ऐसा करें तो, हम वैसा करें तो। तो ज्ञानी ने देखा है कि इनके लिए तो वही दवाई है, दूसरी दवाई इनके लिए नहीं है, तो उनको चाहे वो अनुकूल पड़े, अनुकूल लगे नहीं लगे, वही दवा खानी है, वही दवा लेनी है, ये बात है। वो कौन करता है कि जो आज्ञा में एकतान होना चाहता है वही करता है, जो आज्ञा में एकतान होना नहीं चाहता है वो बात नहीं करेगा, और उसको प्राप्ति भी सुलभ नहीं रहेगी। निर्धार करने वाला कोई भी होता है, पहचान वाला तो हो ही, लेकिन बिना पहचान वाले को फिर विश्वास भी है, मानता क्यों है ओक संज्ञा से कि कुछ तो विश्वास आया है, और बुद्धि तो बहुत सी बातों में लगाता है, भले ही पहचान नहीं हो लेकिन बुद्धि तो लगाता है, तो यहाँ उतनी बुद्धि लगा ले कि मुझे तो मेरे लायक कोई बात हो उसमें एकतान होकर के काम करना है, उतनी बुद्धि लगा ले, उतना निर्धार कर ले बौद्धिक स्तर पर, बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए करके देखो ना, सही बात तो है कि कितना फायदा होता है। जब ये बात सामने आई है तो करके देखें अपन। उपदेश में तो अपने अपने लायक तो बहुत सी बात आती है, पकड़ ले कि मेरे लायक कौन सी बात आई, और फिर उसमें एकतान होकर के प्रयास करें, देखो कितना फायदा होता है। उस फायदा अनुभव करके देखेंगे तो फिर इस विषय में कोई प्रश्न उठेगा। और एकतान होने के लिए, उसके लिए मैंने एकतान होने के लिए आप क्या उपाय करोगे, नरसिंह जी भाई को पूछा है। बोल तो दिया हमने, लिख तो दिया, लेकिन साथ साथ हम पूछते कि उपाय क्या करना चाहते हो। एकतान आपने जब आज्ञा के लिए कृपा करने की बात कही तो आज्ञा में एकतान हो जाओ, यही हमारा उपदेश है। तो एकतान होने के लिए क्या करोगे उसको पूछा है। तुमको क्या लगता है एकतान करने के लिए क्या करना चाहिए पूछा है। आप क्या उपाय करोगे, यानी आपने क्या उपाय करने का सोचा है, धैर्य छे इतले सोचा है, क्या सोचा है आपने इस विषय में, क्या सोचा है। आज्ञा के लिए तो आपने डिमांड किया कि आप कृपा करके हमको कुछ आज्ञा दीजिए, लेकिन आपने क्या सोचा है। आज्ञा में एकतान होना पड़ेगा जब ही काम होगा, इसके लिए क्या सोचा है, क्या उपाय करना चाहते हो, अधिक क्या लिखे, इसके इससे ज्यादा क्या लिखें। देखो कितना छोटा सा पोस्टकार्ड लिखा है, लेकिन कितना मार्मिक पत्र है ये। मुमुक्षु की भूमिका की ऐसी बातें अन्य शास्त्र में ढूंढने को जाओगे तो भी नहीं मिलेगी, ये ऐसा शास्त्र है ये। भले ही पत्र के रूप में है लेकिन है शास्त्र। ज्ञानी के जो वचन है वो शास्त्र है, वो आगम है। उपलब्ध शास्त्रों में मुमुक्षु की भूमिका के ऐसी चर्चा, ऐसी बातें, ऐसे मार्गदर्शन कहीं देखा नहीं जाता। और एक भी तीर लग गया, कोई कोई शुभ चौघड़ी है, ठीक कोई शुभ बेला में एक भी तीर लग गया तो उसको तो लाइन हाथ में आ जाएगी। बस लाइन हाथ में आ गई तो आगे बेड़ा पार
हो जाएगा,
ऐसी बात है। एम लागे छे के सामा माणसे जब अगले ने आज्ञा के लिए विनती किया है कि आप कृपा करके हमको कुछ आज्ञा दीजिए, तो उसकी तैयारी कितनी है वो जानना चाहते हैं शायद, कि तैयारी कितनी, कितना तैयार है वो। जैसे एक अपने कोई इतिहास में एक बात आती है गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह जब पंजाब में थे तो मुसलमानों का राज्य था दिल्ली में, और वो लोग सारे हिंदुस्तान को अपना बनाना चाहते थे, तो जो भी इतने अपने अंडर में नहीं आते थे उसके सामने लड़ते थे, ताकत बहुत थी उनके पास। अब क्या हुआ कि एक नदी थी पंजाब में, वो नदी में पानी भरा हुआ था, एक और मुगलों का सैन्य मुसलमानों का पड़ा था, एक और सिख लोका का पड़ा था। एक रात को मीटिंग बुलाई गुरु गोविंद सिंह, उसको लगा कि लड़ने से तो हम हारने वाले हैं, अपनी ताकत उतनी है ही नहीं, इनके पास इतना बड़ा सैन्य है और साधन है कि अपन तो जीतने वाले हैं ही नहीं, हारने वाले, मरने वाले ही हैं। अब क्या करें कि रात को सारा सैन्य उसका सो गया है, इसका रात को हम 12 बजे हमला कर दें तो ये सब नींद में मर जाएंगे, तैयार नहीं हो सकेंगे, कोई व्यूह रचना नहीं होगी। उसने रात को 12 बजे मीटिंग बुलाई छावनी में, बोले कि भाई हमको ज्यादा सैन्य की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहें कि अपना सिर काट के मेरे हाथ में दे दो, ऐसे कितने हैं वो मेरे साथ रहे, दूसरे चले जाएं इधर से, क्या कि अपनी चोटी पकड़ करके अपनी तलवार से अपना गला काट करके सिर हमको दे दे, ये लो ले लो हमारा सिर, ऐसे कितने हैं उतने ही मुझे चाहिए, मतलब लड़ने की तैयारी कितनी, वैसे ही मरने वाले तो हैं ही आप, जब सैन्य में आए हैं तो सामने वाले इतने हैं कि आप लोग तो मरने वाले हैं ही, अब देख लो कि मैं अभी कहूंगा कि ऐसा करना है, आप उसके लिए विकल्प नहीं करोगे, कोई प्रश्न नहीं करोगे कि ऐसा क्यों। तो ऐसे बहुत कम लोग निकले, फिर भी जो भी जितने निकले 100, 50, 200, 500 जो भी निकले थे, उन्होंने बोला कि नदी में अब कूदो और तीर करके सामने पहुंच जाओ, सारा सैन्य मुसलमानों का सोया हुआ है, सबको मार डालो, काटो। और मुसलमान बादशाह हार गया, एक ही प्लानिंग में हार गया, बहुत कम लोगों से वो मर गए सब। तब से कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो गया होता, क्योंकि वो लोग तो सबको मुसलमान बनाते थे। अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होता तो सारा हिंदुस्तान आज कोई हिंदू ही नहीं रहता, सब मुसलमान हो जाता, ऐसा इतिहास में बोला जाता है। तो क्या बोला कि तैयारी कितनी है, आज्ञा तुमको चाहिए लेकिन आज्ञा उठने के लिए तैयारी कितनी है वो बात चली है, कि तुम सब कुछ देने के लिए तैयार हो, एट एनी कॉस्ट तुमको आज्ञा उठानी है या कुछ उसमें गिनती करने की, इतनी कॉस्ट लगे तो करना है, वरना इससे ज्यादा कॉस्ट लगे तो नहीं करना है, ये कंडीशनल काम नहीं चलेगा इधर, अनकंडीशनल सरेंडरशिप जिसको कहते हैं, उसमें आ गए हो फिर कोई बात नहीं है। और ऐसा होने के लिए क्या सोचा है, कितनी तैयारी है, और तैयारी के लिए क्या आपकी विचारधारा है, क्या सोचा है बताओ, ऐसा कोई प्रश्न पूछा है ऐसा लगता है। तो इस तरह ये जो छोटा सा पत्र है लेकिन बात तो बहुत भरी है उसमें।
वासुदेव जी मंदिर भगवान जय हो।